अब अल्लाह ताला हम सबको वो याद कराते वक्त इमेजिन कीजिए मैं और आप वहां खड़े हैं, यौम युक्शफु अन साक़िम युदउन इला सुजूद, जिस रोज सख्त वक्त आ पड़ेगा और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा, फला यस्ततीउन, तो ये लोग सजदा ना कर सकेंगे, खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, इनकी निगाहें नीची होंगी, जिल्लत इन पर छा रही होगी। कहा जाएगा वक़द कानु युदाउन इला सुजूदी वहुम सालिमून, जब सही सालम थे इस वक्त इनको सजदों के लिए बुलाया जाता था लेकिन ये इनकार करते थे। दिल चाहता है दो आंसू तो आंखों से निकले इन आयतों को पढ़ते हुए। आज सही भी हैं, सलामत भी हैं, जिस्म झुक भी सकता है, पांव चल भी सकते हैं, कमर मुड़ भी सकती है, फिर अल्लाह के आगे नहीं झुक रहे। तो कल ये उस वक्त का मंजर है जब मैदाने हशर में अल्लाह ताला नजूल फरमाएंगे, तो अल्लाह को देखकर ऐसे लोग झुकना चाहेंगे जैसे आज दुनिया में किसी बहुत बड़े को देखकर आप एकदम कम अज कम खड़े तो हो ही जाते हैं ना, हाथ पांव पड़ जाते हैं ना, लोगों को हाथ पांव पड़ जाएंगे अल्लाह को मैदाने महशर में आता देखकर, तो लोग झुकना चाहेंगे। जो लोग दुनिया में अंदर से भी झुके हुए थे और नमाजों की सूरत में सजदों के भी आदि थे, वो तो फौरन अल्लाह के आगे झुक जाएंगे। और इमेजिन कीजिए इब्लीस को, जिसने कहा मैं क्यों सजदा करूं उसको जिसको तू हुक्म देते, वो खड़ा है पूरे क्राउड में, लोनली ना क्राउड, प्रोमिनेंट तो होगा, सब झुके, वो अब वो झुकना चाहेगा, झुक रहा है झुक रहा है, मेरी नजर में वो तस्वीर है सामने, आप देखिए रबी चालनी मुकीमत सला, डिफरेंट पोस्टर्स है ना, मैं इसी को बिल्कुल सोच रही हूँ इस वक्त। अब देखिए एक पुस वो शख्स है जो नीचे झुक गया है, दूसरा जब रुकू की कैफियत में, तीसरा तशहुद में एक हाथ नीचे खड़ा है, आप बिल्कुल इस तस्वीर की पिक्चर बना के इसके साथ इनको भेजते हैं, क्यामत के दिन यही होगा, जो दुनिया में झुका हुआ था ना वो अल्लाह को देकर झुकेगा, जिसके अंदर नमाजें तो थी अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अंदर का झुकाव नहीं था, मत सोचिए हर नमाजी जो है वो अल्लाह के आगे भी झुका हुआ है। हम अपने ग्लासेस को भी ठीक करके रखते हैं, ये इतने महंगे ग्लासेस हैं सजदे में, इस पर स्क्रैच ना आ जाए, वो कोई नहीं झुका होता बंदा। नमाजों में भी हम अब कपड़ों को कॉन्शियस होते हैं कि मेरे कपड़े ना खराब हो जाए इसलिए मैं नहीं ज्यादा झुकती। तो जो दुनिया में अंदर बाहर से जितना झुका होगा ना ये सारी पोजीशंस है, और ये जो बिल्कुल पीछे खड़ा शख्स है ना, ये है वो शख्स ना नमाजों में झुका ना अल्लाह के हुक्म के आगे झुका। अब कितनी शर्म आएगी उसको उस वक्त, सब देखेंगे ओ अच्छा ये, और वही खड़े होंगे ना जो देख रहे हैं, झुके हुए तो वो दिखेंगे भी नहीं, वो तो झुक के आज झुकिए, आज वक्त है, वल्ला ही ये वक्त कभी नहीं आएगा, जो चला गया वो वक्त नहीं आएगा, और उस वक्त अल्लाह भी देखेगा ये है रिबेलियस लोग, ये मेरी मखलूक थी, लेकिन क्या मखलूक थी, अकड़े हुए गर्दने अकड़ी भी, दिन में कुछ वक्त मट्टी पे बैठे जमीन पे बैठे, फटे पुराने जोड़ों का एक जोड़ा जरूर रखा करें, ये मैं आपको अपनी बात बता रही हूं, नए जोड़े दे दें लोगों को, दो चार पुराने खिसे पिटे कपड़े जरूर रखें, कम अज कम हफ्ते महीने में एक आध बार पहने और अपनी औकात याद करें, मासियां जैसे कपड़े पहनती है वैसा जोड़ा एक रखें, कहीं पेबंद लगाएं तो उसको सीए, मत रोनो चमे को मैं नहीं पहनती, रंग उड़ गया मैं नहीं पहनती, फट गया मैं नहीं पहनती, ये आज हमारे खुनस भरा हुआ है दिमागों में, इसीलिए आज हम ना अपने घर वालों के आगे झुकते हैं ना अल्लाह के आगे झुकते हैं, नखरे देखते हैं हम अपनी औलादों के, इतना लाड देखा उनको कि हमने उनको स्टबन बना दिया, तो आज झुक लेंगे इंशाल्लाह कल फायदा होगा। और आदत होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दुनिया में जो बूढ़े माशाल्लाह जवानी से नमाजें पढ़ते हैं आप देखें आखिरी उम्र तक उनका जिस्म फ्लेक्सिबल है, इसके बरक कुछ नॉन मुस्लिम्स को आप देखें वो 50s 40s के बाद झुक ही नहीं सकते, स्टिक लेके चलते हैं, क्योंकि आज साइंस ने बता दिया कि बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, आदत रहती है अदरवाइज झुका नहीं जाता, इसका फिर ऑल्टरनेट उन्होंने एक्सरसाइजेज मशीनों पर खड़े होकर कर लिया, लेकिन दुआ कीजिए अल्लाह हमें अंदर बाहर से झुका दे। बस नबी तुम इस कलाम के छुटलाने वालों का मामला मुझ पर छोड़ दो, कैसे अल्लाह अपने नबी को रिलैक्स करते होंगे, काम क्वाइट लीव देम आई विल टेक केयर ऑफ देम, जिनको नहीं इस कलाम की परवाह छोड़ दो हम ऐसे तरीके से इनको बतदरीज तबाही की तरफ ले जाएंगे कि इनको खबर भी ना होगी। अल्लाह कहता है ये अपनी मर्जी से दीन की मुश्किलात नहीं सहना चाहते, मैं इनको ऐसे पकड़ूंगा इनको पता ही नहीं चलेगा, मैं इनकी रस्सी दराज कर रहा हूं, मेरी चाल बड़ी जबरदस्त है, 3 सेकंड तक इन आयतों पर गौर करें, जब तक इख्तियारी तौर पर मुजाहिदे नहीं करेंगे, अल्लाह के लिए इख्तियार से बाय चॉइस मुश्किल लाइफस्टाइल नहीं चूज करेंगे, अल्लाह हमें किसी बीमारी में मार देगा, डॉक्टरों के पास ले जाएगा, ये फजर नहीं बमय यू कजिब भी हासिल हदीस यही है, जब ऐसे खेचूंगे इनको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा बाद सफा लोग अपनी किसी तकलीफ को वजह बना के दीन से रुकते हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता हमारी ये तकलीफ दीन से दूरी की वजह से आई है। इसका इलाज डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में नहीं है, इसका इलाज है आप अपनी हाथ में स्टिक पकड़कर कमर को संभालते हुए आ जाइए अल्लाह के डॉक्टर की दुकान पे, यानी जो अल्लाह ने किताब के लिए रखा है, वहाँ थोड़ा सा बैठे, जितना इंतजार उधर करते हैं उतनी देर क्लास में बैठे, उठ के चले जाएं, लेट जाएं, बैठ जाएं, कोई आपको नहीं रोकता। देखिए जो वहां आके आपका इलाज होगा वो डॉक्टरों के पास नहीं होगा। सनस्तदरी जो हो मिन हई सुला यालम, हम किसी पे कोई क्यास नहीं करेंगे ना आप किसी का सोचें। अगर आप किसी को देखते हैं या जानते हैं या सोचते हैं, अपने ऊपर लीजिए, आज नहीं झुकूंगी अल्लाह मेरी कमर में बंप डाल दे फिर सीधी हो ही ना सकू, आज नहीं टूटती अल्लाह मुझे तोड़ के बिस्तर पे डाल दे तो आज टूटना है। अल्लाह अकबर, ये आखिरी कील है। आप कह लीजिए कि इस शख्सियत को जो हमने तोड़नी थी ना अल्लाह के लिए इस कुरान को पढ़कर, अगर अभी तक नहीं टूटी तो इन आयतों को आप अपने ऊपर लेकर सोचें। इस कुरान ने, इस दौरे कुरान ने मुझे तोड़ा, इसने मुझे झुकाया। आप सबके सामने फीडबैक फॉर्म्स दिए हमें, सब अपने दीजिए, इसको हम चूज करेंगे, आज ही दे दीजिएगा, कल से पहले जो भी इसके सिलेक्टेड होंगे कल प्रोग्राम में इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो आप इसको दूसरों की हिदायत के लिए भी बनाएंगे। क्या दिया मुझे इस दौरे कुरान ने, और उर्दू में लिखेंगे तो मोर प्रॉम्पट होता है, लेकिन जो साथ इंग्लिश में लिखते हैं नो प्रॉब्लम, हम कुछ शेयरिंग इंग्लिश की दे देंगे कुछ उर्दू की इंशाल्लाह ताला। यही फॉर्मती का ऑनलाइन पे भी दे दें स्टूडेंट्स को, वो भी उसी पे फिलअप करके भेज दें। ये नबी की तड़प है, असल में सूरह कलम फिर क्यों इमोशनल हो गई, क्योंकि ये नबी की तड़प है। मक्का की गलियों में, मदीना की गलियों में रो चारा कि लोगों बच जाओ, लोगों हिदायत ले लो, लोगों समझ जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी मिसाल तो ऐसी है कि जैसे तुम आग के किनारे में गिर रहे थे, मैं पीछे से तुम्हारी कमरे में पकड़ रहा हूँ। इमेजिन कीजिए कोई शख्स आग में गिर रहा है और कोई साहिब दर्द पीछे से तो उसकी कमर को पकड़ के खींचता है। फरमाया मेरी तुम्हारी मिसाल तो ऐसी है कि तुम तो गिर गिर के जहन्नुम में पड़ना चाहते हो और मैं पीछे से खींचता हूँ, पीछे से खींचता हूँ। कितना आसान था घर बैठ के तस्बीह अल्लाह अल्लाह करते रहते, लेकिन जब दूसरे को खींचते हैं तो उसमें आपको भी तकलीफ होती है। तो अल्लाह कह रहे हैं ये नहीं मान रहे, छोड़ो इनको, मैं खुद बात करूंगा इनसे, ये मेरा मामला, अभी आपकी अदालत से जाके ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस, अब आप निकल जाएं। और अल्लाह ताला कहते हैं देखो इन ना समझो को इतना भी नहीं पता कि हम तसलू मजरन फहम मिम मगरम मुस्कलून, क्या तुम इनसे कोई अजर तलब कर रहे हो कि उस चट्टी के बोझ तले दबे जा रहे हैं, यानी क्या तुम इससे कोई दुनिया के फायदे लेना चाहते हो, तुम्हें अपनी जात के लिए इनसे कोई माल चाहिए इसके बदले में जो देना इनको मुश्किल है, कि इनके पास गैब का इल्म है जिसे ये लिख रहे हो। अच्छा अपने रब का फैसला सादिर होने तक सब्र करो, और मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह न हो जो जब उन्होंने पुकारा और वो गम से भरे हुए थे, अगर उसके रब की मेहरबानी उनके शामिल हाल न हो जाती तो वो मजमूम होकर चटियल मैदान में फेंक दिए जाते, आखिरकार उनके रब ने उन्हें बरगजीदा फरमाया और उन्हें साले बंदों में शामिल कर दिया। देखिए अल्लाह के नबी पे कैसे हालात, डर था कि जैसे हजरत यूनुस चले गए थे ना कौम की हिदायत से मायूस होकर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर इजाजत मिले मक्का छोड़ के मदीना या कहीं और ना चले जाए, कहीं अभी बैठे। इससे पता चलता है जब तक अल्लाह चाहता है किसी मोल किसी जगह पे बंदे को रखता है। अब इनको और समझा लो, एक और बात कर लो, शायद इनकी अकल आ जाए, शायद इनको इस नेमत की कदर आ जाए, शायद इनको कुछ इस अल्लाह ने जो इनको चुना है उसके ऊपर आ जाए, शायद इनका दिमाग खुलने लग जाए कि हमें करना क्या और क्या नहीं करना। कब तक किसी की उंगली पकड़कर चलेंगे, अल्लाह ने नबी को आप नहीं निकल सकते, कितने मुश्किल दिन थे, आप पढ़िए इंशाल्लाह आपको बाद में खुशखबरी देते हैं, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, फिर आप इस दर्द को समझेंगे। कुरान तो पढ़ ही लिया है ना, आगे देखेंगे आपके साथ क्या होता है। जब तक नबी का वो मक्का और मदीना की गलियों में चलना आंखों से नहीं देख लेते, आपको मुझे इस कुरान की भी कदर नहीं आएगी, जिसको अल्लाह के नबी ने पूरी कोशिश करके हम तक पहुंचाया। तो अल्लाह कहते हैं आप मक्का नहीं छोड़ सकते, सॉरी प्लीज यू नीड टू बी हेयर, यूनुस की तरह नहीं होना, फिक्र नहीं करें, हम आपको समझाते हैं। और आखिरी आयतें देखिए, कुफार ने अल्लाह के नबी को हर तरह सताना जब चाहा ना, और आप उस दिन से नहीं हटे, अब एक आखिरी खरबा क्या करते थे, अल्लाह की नबी की महफिलों में आते ना तो आपको टुकर टुकर देखना शुरू हो जाते हैं। अब तो ये भी एक गुस्ताखी होती है, साहब अल्लाह के नबी के सामने बैठते ही नहीं थे, बैठ जाते थे तो आपके साथ नजरें नहीं मिलाते थे, अब एक मोहब्बत की नजर है, प्यार की आई कॉन्टेक्ट है वो और चीज है, लेकिन आंखों में दिखता है कि किसकी बेबाक आंखें और किसकी है, तो वो अल्लाह के नबी को आके घूरते, अब आप अपने ऊपर ले आप बैठे कहीं और कोई आपको घूरता जाए घूरता जाए घूरता जाए तो आप परेशान होंगे ना, क्यों घूरते थे, ताकि आपको पजल करते और नजर लगाना चाहते थे। इसी का जिक्र अगली आयतों में अल्लाह ने फरमा दिया, वही यकादुल्लज़ीना कफरू लयुस्लिकूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र, جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، یعنی ذہن میں ہی باتیں سوچتے رہتے ہیں اس شخص کے بارے میں، یہ کون ہے، یہ کریزی ہے، کیسی امپاسبل باتیں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، نبی ایک نصیحت ہے، تو جس نے اس سے فائدہ لے لیا اس کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ملے گا. پہلی صورت پھر دہرا دیتی ہوں، پرپز آف لائف اور توحید اللہ کی ذات. اب دوسری صورت میں ہم نے نبی اور ان کا مشن پڑھ لیا اور لوگوں کے رویے، آپ بھی جب نکلیں گے آپ کے ساتھ بھی سب ہوگا. اب تیسری صورت الحاقہ، جس میں عقیدہ آخرت، کسی موضوع کو اگر نئے لوگوں سے چھیڑنا ہے تو وہ آخرت کی چیزوں کو چھیڑ لیجئے، بہت ہی زیادہ دل کو چھونے والی صورت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا کریں. صورت الحاقہ، الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ تم الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. ہونی شدنی کیا ہے وہ ہونی شدنی، یعنی مراد ہے کہ وہ کام جو ہو کے رہے گا جو قیامت، جس کا نہ حق ہے. تم کیا جانو کہ وہ ہونے والی چیز کیا ہے؟ عاد اور ثمود نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو چھٹلا دیا، تو ثمود ایک سخت زلزلے سے ہلاک کر دیے تو ثمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے. قوم عاد اور ثمود کا ذکر شروع میں کر کے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں تو اللہ تعالیٰ برپا کر ہی چکے، تو جب اتنی جو اس وقت کے سارے لوگوں کو ختم کر دیا گیا تو کیا آج اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتے؟ اور ثمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. تو اب کیا آپ کو ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ ذرا امیجن کیجئے، جب قوم عاد پہ طوفانی ہوائیں چلی تھی، اگلے دن کیا ہوگا، کہیں کسی کی بازو پڑی ہوئی ہے، کہیں سر پڑا ہے، گردنیں پڑی، لمبے کد تھے ان لوگوں کے، تو ہوا جب چلی نا تو یہ گردن جو ہے ادھر سے ان کے سر کٹ کے الگ گر گئے، اور لمبے لمبے جو نیچے جسم تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کے میرے سامنے کیا پیش کیا کہ کان نہما جاز و نخل خاویہ، کھجوروں کے جیسے تنے گرے پڑے. آپ امیجن کریں، رات کی آندھی کو پھر ذہن میں رکھیں، کیا اس وقت دنیا میں خبریں پھیلی ہوتی اگر اس وقت نیوز بلٹن ہوتے، تباہی بربادی. اور ان کو اتنا مان تھا اپنے سپر سپریم پاور ہونے پہ، فخر کرتے تھے. اللہ کہتے اسی طرح قیامت آئے گی تو یہ بڑے بڑے سر کٹ کے دور گرے پڑے ہوں گے. اور اسی خطۂ عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس کے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا، یعنی قوم لوط. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. کیا پتہ چلا کہ جس طرح اتنی بڑی تباہیوں میں چند ایمان والے بچا لیے گئے، اسی طرح قیامت کے دھماکوں میں سے ایمان والوں کو بچا لیا جائے گا اور وہ جنتوں میں بھیج دیے جائیں گے. اسی طرح کی اب ایک اور قیامت آنے والی ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. امیجن کیجیے، تیز چلتی ہوئی گاڑی، ایک دم بریک لگے، ٹائر چڑچڑاتے ہیں اور گاڑی یوں سپن ہو کے گھومتی گھومتی جا کے کسی کھائی میں گر جائے، وہی منظر یہاں دکھ رہا ہے. اسے آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے اطراف اور جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور سب سے بڑی اس دن کی مشکل اور وہ کیا ہے؟ یومئذ تردون لا تخفى منکم خافیہ. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. سوچیے ذرا، پہاڑوں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے، زمین پہ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس کمزور 5-6 فٹ کے انسان پر کیا حال ہوگا؟ اس کو بھی وہاں دھکے پڑو اگر تم یو می آئی ہم اپنے اوپر لے. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب ایک دن واقع ہو جائے گا. اب اس سے بڑے اگلے منظر. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اس وقت جس کا نام ہے اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں لیا جائے گا، وہ کہے گا دیکھ لو، لو دیکھو پڑھو میرا نام ہے اعمال. मैं समझता था कि मुझे जरूर अपना हिसाब मिलने वाला है। फहुअ फी इश्शते राधिया, वो दिल पसंद ऐश में होगा, आली मकाम जन्नत में, जिसके फलों के गुच्छे छुके पड़े होंगे। ऐसे लोगों से कह दिया जाएगा, मजे से खाओ और पियो अपने इन आमाल के बदले जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किए। ये हैं वो लोग जो दुनिया में जम गए थे, जिनको आप कहना है कि लॉक इन हो गए थे, बस उनको एक तड़प लग गई, कुछ करना है कुछ करना है, पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम, फुल टाइम नहीं 100%, छोड़ा नहीं, परफेक्शन के दर्जे पे। जब दुनिया में इतने खूबसूरत मेहनतें करके गए, तो वहां सिर्फ एक जुमले में लोगों को अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं कि निजनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन जन्नत में जाने वाले ने अपनी बताई है कि मैंने जिंदगी इस शऊर के साथ गुजारी कि मुझे अपने हिसाब से मुलाकात करनी है। एक पैनी भी खर्च करता था तो ये पता था इसका कल हिसाब देना है, और एक रोटी का टुकड़ा भी डस्टबिन में फेंकता था तो वो याद रखता था कि ये मेरे नामे अमाल में जाना है। अपनी जात पे 10 लग सकते थे तो 100 लगाते से पहले सोचता था कि ये 90 किस खाते में जाएंगे। ये हिसाब होता है। और आप देखिए कितना खुश है, सबको अपना नामे अमाल दिखा रहा है। बच्चों के साथ क्या होता है, अच्छी रिपोर्ट आती है, घर से बाहर आते हैं ना स्कूल में, तो आते ही बच्चे कैसे कहते, मम्मी लुक एट दिस दिस दिस, पास हो गया, फर्स्ट आ गया। कभी रिपोर्ट कार्ड बच्चों ने घर लाके दिखाई होगी। और जिस दिन आपके बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले नींद में आपको मम्मी मम्मी आंखें बंद करके साइन कर दें, तो समझ जाइएगा कि उस दिन फेल हो गए। फिर याद ही नहीं रहता रिपोर्ट पकड़नी। तो ये वो शख्स था जो पास हुआ, आप फेल होने वाले का हाल भी सुन लीजिए, और अल्लाह में से किसी के साथ भी ऐसा मामला ना करे। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, और जिसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा काश मेरा अमाल नामा मुझे ना दिया जाता और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। काश पेपर फट जाते, आग लग जाती, जल जाते सारा रिकॉर्ड, जंग लग जाती, दुश्मन हमला कर देता उस बिल्डिंग पे और हमारे सब पेपर जल जाते और कहा जाता सब सबको ऐसे ही पास कर दिया। वहां जाके बुरी रिपोर्टों को इंसान फेस भी नहीं कर सकेगा। अल्लाह अकबर, क्या उस वक्त हाल होगा इंसान का। वला मदरी मा हिसाबी, और काश मैं जानता ही ना मेरा हिसाब क्या है। फयकूलु या लैतनी लमूत किताबिया वला मदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया, काश मेरी मौत मेरा काम तमाम कर देती, यानी इस मौत के बाद आज मुझे उठाया ना जाता। मागदानी मालिया, आज मेरा माल मेरे किसी काम ना आया। हलकानी सुल्तानिया, मेरा सारा इक्तदार खत्म हो गया, अब क्या फायदा। कितना कन्फेस कर रहा है। आज दुनिया में ये समझ आता है कि मैंने क्या किया, मेरी जिंदगी गफलतों वाली थी, खराबियों वाली थी। जवाब सुन लीजिए, खुजूहु फगुल्लूह, पकड़ो इसको और इसकी गर्दन में तौक डाल दो। दुनिया में खुला फिरता था ना, अल्लाह के हुक्म नहीं मानता था, आज इसको तौक पहना दो। सुम्मल जहीम असल्लू, फिर इसे जहन्नम में झोंक दो। सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबून सिरान फसलुकू, फिर इसको 70 हाथ लंबी जंजीर में जकड़ दो। ये ना अल्लाह बुजुर्ग को बर्तर पर ईमान लाता था और ना मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देता था। लिहाजा फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, बस आज इसके लिए यहां कोई भी दिली दोस्त ना होगा और ना जख्मों के धोवन के सिवा इसके लिए कोई खाना, जिसे खताकारों के सिवा कोई नहीं खाता। बताइए ये अंजाम अच्छा के दूसरा कौन सा है? खुद को सोचिए, आज दुनिया में बड़े बने फिरते हैं। ये हर वो शख्स सोच होता है जिसने नेकियां की और शो ऑफ कर दी। आपने कभी दुनिया की कोई एग्जीबिशन देखी होगी या किया होगा? एग्जीबिटर्स जो होते हैं ना, वो अपनी चीजें पहले नहीं दिखाते, वो दीवारों पे पर्दे लगा के और कागज लगाते हैं, कहते जिस दिन डिस्प्ले करेंगे ना उस दिन पता चलेगा। शाहकार था ना। मोमिन दुनिया में अपनी नेकियां ऐसे छुपाता है क्योंकि उसने अल्लाह के सामने उनको एग्जिबिट करना है, अल्लाह को दिखाना है। रियाकारी करने वालों की चीजें दुनिया में लोगों देखी होंगी, वो जरूरत से ज्यादा डिस्प्ले करके दिखा देते हैं। और याद रखिए, ये वो किरदार है जिसकी पूरी जिंदगी डिस्प्ले पे चलती थी, जिसको डिजाइनर लव्स के बगैर कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। अल्लाह कहता है इसको कफन दो, किस डिजाइनर का बना हुआ। बाथरूम इसका इटालियन था या अमेरिकन था या चाइनीज था, लेकिन इसको तो एक लकड़ी के तख्ते पे गुसल देना पड़ेगा। वहां जिकूजी थी, कुछ था, इधर तो डब्बे से गर्म पानी बेरी मिले में डलेगा। 70 किस्म के लोशन इसके बाथरूम में पड़े थे, आज इसको फिर बेरी के पत्तों से गुसल देना पड़ेगा। घर से निकले, मर्सिडीज पे निकले, लैंड क्रूजर पे निकले, लेकिन इनको तो मैयत गाड़ी में जाना पड़ेगा, जो किसी भी अलखिदमत वाले की है या किसी और की है। और दुनिया में इसकी मीटिंग्स बड़े बड़े होटल्स में होती थी, लेकिन आज जो अल्लाह से इसकी मीटिंग है वो तो कब्र के अंदर होगी। आज इसको पूछ लो किधर जा रहे हो। मरते इस सबसे पहले इंसान की क्या चीज जाती है? उसका नाम जाता है। किधर है बॉडी? बॉडी को दफनाना, बॉडी बॉडी। कभी कोई कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट को दफनाने लगे, प्राइम मिनिस्टर साहब किधर हैं? हाय, कब्र में हिसाब होगा तो क्या आके कहेंगे, हाय प्राइम मिनिस्टर, सुनाइए क्या हुआ, सुनाइए वो MNAG और MPSG और आप बड़े बड़े नाम और सर और बॉस और डॉक्टर और फुलां और सर और ये नाम लिए जाएंगे? हलक अन्नी सुल्तानिया, मागनानी मालिया, ना घर काम, ना बच्चे, ना और, सब खत्म हो गया। और आज मर्द तो मर्द, अच्छे ओहदे पे शौहर हो तो बीवी की भी अकड़ बहुत होती है। जब तक हम अपनी चीजों के साथ अपने आप को एवेल्युएट करना नहीं छोड़ेंगे, हम अल्लाह के दीन के काम के नहीं बनेंगे। हम कहते हैं मैं कितनी कीमती हूँ, कितने कीमती कपड़े पहनती हूँ, बस मेरी तो ये वैल्यू है, ये मेरे मेयार से हटी हुई चीज है, मैं नहीं बैठ सकती, मैं नहीं सुन सकती, मैं इतने रूल्स नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि अंदर खुनस भरा हुआ है। अल्लाह कहते हैं वहां जाके रोएगा इंसान। सबको हकीर समझते थे, अल्लाह कहते थे एक धोखा था, उसमें पड़े हुए थे, चले जाओगे। सब रोब दब दबा खत्म। ये मासिस, ये ड्राइवर्स, ये फलां, हम आम लोगों के साथ नहीं बैठ सकते। मैं हूं, आई एम बिग। अल्लाह कहते ये इंजाम होगा कि वहां उनको डालकर फेंक दिया जाएगा। याद रखिए, तकबर के साथ दीन नहीं आता और अल्लाह की इताअत नहीं होती। अब आखिरी हिस्से में नबी सल्लम के नाते से कुछ बातें देखिएगा। बस नहीं, मैं कसम खाता हूं इन चीजों की भी जो तुम देखते हो और इनकी भी जिन्हें तुम नहीं देखते। एक रसूल का कॉल है, यानी इस कुरान को हल्का जानते हो? देखो ये क्या है, ये एक रसूल का कॉल है, किसी शायर का कॉल नहीं। तुम लोग कम ही ईमान लाते हो, और न ये किसी काहिन का कॉल है, तुम लोग कम ही गौर करते हो। है क्या ये? इस जुमले को मैं जोर दे के पढ़ना चाहूंगी, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। छुए जरा अपने कुरान को और फिर इस आयत को पढ़े, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन। अब इसकी वैल्यू पूछे, क्या डिजर्व करती है ये किताब, मुझसे किस चीज का तकाजा करती है ये किताब? अल्लाह ने नाजिल की, ये अल्लाह का कलाम है। ये तो हम खुश नसीब है कि हमें अल्लाह ने ये नुस्खा पकड़ा दिया। बड़े लोग तो अपने डॉक्यूमेंट्स देते ही नहीं है किसी को, असली चीजें तो वो पास रखते हैं। अल्लाह ने ये कुरान आम कर दिया ना, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। होते पूरी दुनिया में इसके कोई 20-25-50 नुस्खे, एक प्राइम मिनिस्टर के पास, एक प्रेसिडेंट के पास और एक किसी और बड़े के पास। फिर देखिए हम जाते जूतियां पटकते हुए उनके घरों में, किस तरह हमें एक दफा छू तो करा, ज़ियारत तो करा दीजिए, कैन आई टच दिस, क्या मैं इसको छू लूँ, मैं पकड़ लूँ, मैं एक दफा इसको देख लूँ। फिर हम कितनी कदर करते हैं। आज हर मस्जिद के रैक में रुलता हुआ दिखता है, हर मदरसे में पड़ा हुआ है, इसलिए हम इसकी कदर नहीं है। और आ चुके हम खुद पढ़ाने बैठ गए तो इसलिए इसकी कदर नहीं है। गिव इट्स ड्यू राइट, इस किताब को इसका हक देंगे तो बचेंगे, वरना याद रखिए दुनिया से जब जाएंगे तो उस वक्त क्या हाल होगा। और ये है वो आयतें जिन्होंने पहली दफा हजरत उमर के दिल के ताले खोले थे। अभी इस्लाम की नफरत में और हरम में जाके चुपके से अल्लाह के नबी का कलाम सुन रहे हैं। कहते मैं गया अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे थे, मैंने आपकी जुबान से कुरान सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हो ना हो ये शख्स जो है ये शायर है। शक था ना, आज भी लोगों को शक है, तभी नहीं इस किताब की वैल्यू पाते। कहा ये शायर है। कहते अभी मैं ये सोच रहा था तो अल्लाह के नबी ने पढ़ा हुआ माँ हुआ भी कौली शायरिन कली लम्मा तो मिनू। कहते जब मैंने ये आयत सुनी तो मैंने कहा इस शख्स को तो मेरे दिल की बात पता चल गई, हो ना हो ये शख्स काहिन होगा। काहिन कहते थे जैसे ज्योतिषी या किस्मत का हाल मालूम करने लगे। कहा उसके फौरन बाद अल्लाह के नबी ने पढ़ा वला भी कौल इन काहिन इन कली लम्मा तस्करो, ये काहिन का भी कॉल नहीं है। कहते अब तो मुझे यकीन हो गया, क्या तो आ गया तंजीलो में रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का। कहते बस मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत आ गई थी, ये अलग बात है कि फिर टाइम लगा। कई लोगों के दिलों में मोहब्बत आई हुई होती है लेकिन दे नीड सम टाइम, तो वो टाइम बाद इतना हो जाता है कि फिर उनको वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए अगली आयतें नबी सल्लम के नाते से शदीद तरीन आयतें मुझे लगती हैं कुरान की। ये अंदाज तो पूरे कुरान में कहीं नहीं है क्या? और आपको और मुझे इसलिए सुनाई जा रही है कि अगर तुम इस कुरान को चेंज करना चाहते हो, मॉडिफाइड चाहते हो, तो सुन लो, इसका हक तो नबी को भी नहीं था। ولو تقبل علينا بعد الأقابيل لاحظنا منه باليمين. اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والے نہ ہوتا. یعنی یہ قرآن نبی نے نہیں لکھا، کیونکہ وہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، سورت نجم میں آپ پڑھ چکے. تو یہ تو اللہ کا نازل کردہ ہے. ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو در حقیقت پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے. سب کو یہ فائدہ نہیں دے گا، اس کے ساتھ کچھ چیزوں کا پرہیز کریں گے تو فائدہ ہوگا. وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. اللہ نہ کرے میں ہوں اس میں سے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے نشکروں کے لیے یقیناً یہ حسرت کا سبب ہوگا اور ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یقینی طور پر یہ حق ہے. کرو کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس نبی اپنے رب عظیم کرو.